और फिर आगे दसवें अध्याय में विभूति विस्तार योग, असीम सत्य की अपार महिमा, बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य या उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत घटनाएं, चाहे वे इस लोक की हो या आध्यात्मिक जगत में हो, परमात्मा की दैवी शक्ति और एवं ऐश्वर्य के आशंक अभिव्यक्तियां हैं। समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमात्मा समस्त जीवों के परम पूजनीय है। और इस तरह से भगवान अपने प्रिय अर्जुन को अपनी उत्पत्ति का रहस्य युक्त श्रेष्ठ ज्ञान देते हुए कहते हैं कि ना ही देवता, ना ही महर्षिगण उनकी उत्पत्ति का रहस्य जानते हैं, न देवता जानते न महर्षिगण जानते हैं। मोह रहित, पाप रहित, ज्ञानवान ही मुझ अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी को यथार्थ रूप में जान सकते हैं। बार बार भगवान ये बात अर्जुन को क्यों कह रहे हैं कि मुझे कोई नहीं जान रहा है, क्योंकि अभी तक अर्जुन खुद भी नहीं समझ पा रहा है। इसीलिए बार बार ये चीज अलग अलग रूप से भगवान को दोहरानी पड़ रही है, क्योंकि अभी तक वो श्री कृष्ण को ही देख रहा है जो उसका मित्र है। लेकिन तभी भगवान उसको रियलाइज कराने के लिए उसकी भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उसको रियलाइजेशन देने के लिए ये कहते हैं कि मुझ अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी को ज्ञान के माध्यम से ही जान सकते हैं, ज्ञानवान ही जान सकते हैं। जो मोह माया में लिपटे हुए हैं वो मुझे नहीं जान सकते, न देवता जान सकते, न महर्षिगण जान सकते हैं। मनुष्य आत्मा में, और भगवान कहते हैं कि मनुष्य आत्मा में जो गुण विद्यमान है वे मेरे द्वारा दिए गए दैवी संस्कार है, जो अच्छे गुण है वो ईश्वर द्वारा प्रदान किए हुए हैं, जो मैंने उन्हें संकल्प से प्रदान किए हैं। थॉट एनर्जी का ना साइंटिफिक सुनाता हूं मैं, साइंस बताता, सूक्ष्म साइंस क्या है कि जो ईश्वर ने थॉट एनर्जी के माध्यम से दिया गया है, टेलीपैथिक कनेक्शन के द्वारा दिया हुआ है, इसलिए ये सब मेरी संकल्प की रचना है। जो पुरुष ज्ञान के आधार पर मेरी इस विभूति और योग को जानता है वह निश्चयात्मक योग युक्त हो जाता है, उसे कुछ भी संशय नहीं रह जाता है। भगवान को ज्ञान के आधार से ही जानना, बार बार ये कह रहा है, ये चरम चक्षु से देखने वाली बात नहीं है। कोई सोचे कि मुझे साक्षात्कार हो जाए, मुझे दिखाई दे तब मैं मानूं, नहीं, यह ज्ञान के माध्यम से ही समझने वाली बात है, चरम चक्षु द्वारा देख करके समझने की बात नहीं है। फिर भगवान आगे कहते, जिनका मन निरंतर मुझ में रमा हुआ है, जिनका जीवन मेरी सेवा में समर्पित है, जो दूसरों को ज्ञान देते हैं और आपस में भी ज्ञान चर्चा करते हैं, वे प्रसन्नता एवं दिव्य आनंद का अनुभव करता है। अभी हम सभी क्या कर रहे हैं, एक दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं कि कैसे वे मुझे पा सकते हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करता हूं कि उनके अज्ञानता के अंधकार के कारण को ही दूर कर ज्ञान के प्रकाशित दीपक द्वारा उन्हें आत्मभाव में स्थित करता हूं। यही परमात्मा की कृपा है। भगवान कृपा कैसी करता है, ये नहीं कि अच्छा तुम्हें धनवान भव, पुत्रवान भव, ये कृपा नहीं। भगवान कहते मेरी विशेष कृपा ही यह है कि अज्ञानता के अंधकार के कारण को ही दूर कर ज्ञान के प्रकाशित दीपक द्वारा उन्हें आत्मभाव में स्थित कर देता हूं। जब आत्मभाव में स्थित हो जाते हैं, उतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो उसके बाद उसको सब कुछ प्राप्त, जो सोचता है वो मिल जाता है। उसको कुछ प्राप्त करने की, मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, है ना। तब अर्जुन अब समझा, तो अर्जुन अब क्या कहता है भगवान को कि हे प्रभु, आप परम धाम के वासी हो, ये मैंने समझ लिया, परम पवित्र परम सत्य हो, आप अजन्मा हो। अब समझा उसने, आप अजन्मा हो, सर्वोच्च दिव्य शक्ति हो। महान ऋषि भी इस सत्य की पुष्टि करते हैं, आपने जो कुछ भी कहा उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूं। आपके दिव्य स्वरूप को न देवतागण और न ही असुर समझ सकते हैं। आप देवों के भी देव हो, त्रिलोकी नाथ हो। कृपा करके अब भगवान से वो कहते हैं, कितना नम्रता से निवेदन करता है, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताए और किस तरह मैं आपका निरंतर चिंतन करूं, आपका स्मरण करूं, ये बताए। तो ये बताने की एक प्रार्थना की है। तब अर्जुन की जिज्ञासा के प्रति भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। जो स्वरूप वो देख रहा था वो तो साधारण था, अजन्मा को इस चरम चक्षु से तो देखा नहीं जा सकता है, अब उसको समझना चाहता है। तो भगवान कहते, मेरा ऐश्वर्य असीम है, मैं आदि मध्य अंत का ज्ञाता हूं, सर्व आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ परमात्मा। फिर भगवान ने एक एक करके 81 श्रेणियों की जो सर्वोच्च स्थिति होती है, पहले भी कहा बल ऐश्वर्य सौंदर्य की उत्कृष्टता, चाहे इस जगत में हो चाहे आध्यात्मिक जगत में हो, उसके साथ उनकी तुलना की जा रही है, क्योंकि भगवान का ऐश्वर्य असीम है। तो उसको समझने के लिए, क्योंकि मनुष्य बुद्धि उस बात को समझ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए भगवान एक एक करके 81 श्रेणियों में जो सर्वोच्च स्थिति है होती है, उसका वर्णन अपने स्वरूप की असीम विशेषताओं के साथ करते हैं। तो लोगों ने अज्ञानता से समझ लिया उन सब में भगवान है। जब पहले ही उन्होंने कह दिया कि मैं परमधाम का वासी, मेरी कार्य प्रणाली कैसी है, वो भी पहले से ही स्पष्ट कर दिया, फिर भगवान सब में कैसे हो सकते हैं। लेकिन कहा ना, कई बार मनुष्य उस बात को ग्रहण नहीं कर पाता है। तब अभी 81 श्रेणी की बात समझाता है भगवान, उसकी उत्कृष्टता जो होती है, सर्वोच्च स्थिति, उसकी अपनी विशेषता, अपने ऐश्वर्य के साथ, असीम ऐश्वर्य के साथ उसकी तुलना की गई है। तो स्वरूप की तुलना करते पहले कि प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य के समान, सूर्य में परमात्मा हूं ये नहीं कहा, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य के समान, लेकिन कोई दहकता हुआ नहीं है। तब कहा नक्षत्रों में चंद्रमा की तरह शीतल हूं, समस्त पर्वतों में मेरु सर्वोच्च हस्ती है वो, समस्त पुरोहितों में बृहस्पति ज्ञानी है, समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय शक्तिशाली है, समस्त जलाशयों में समुद्र अनंत है अपनी महिमा में, महर्षियों में भृगु और वाणी में दिव्य ओमकार, इतनी मधुर ईश्वर की वाणी है, समस्त अचलों में हिमालय, यानी इतने श्रेष्ठ और अचल है सिद्ध शिलापति, समस्त वृक्षों में पीपल, पीपल क्यों कहा, और कोई वृक्ष का नाम न लेकर के पीपल क्यों कहा, लोगों ने इसीलिए पीपल की पूजा शुरू कर दी, समुद्र की पूजा शुरू कर दी, हिमालय की पूजा शुरू कर दी, सूर्य की पूजा शुरू, क्योंकि अज्ञानता कि भगवान ने जो कहना चाहा उस भाव को समझ नहीं पाए। पीपल क्यों कहा? क्योंकि साइंस ये कहता है, एग्रीकल्चर साइंस ये कहता है कि एक पीपल और एक तुलसी, ये दो वृक्ष ऐसे हैं जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। पीपल जो है 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, दूसरा कोई वृक्ष 24 घंटा ऑक्सीजन नहीं देता है। अर्थात प्राण वायु जिससे हमारा जीवन चले। तो भगवान यही कहते कि समस्त वृक्षों में पीपल, यानी ईश्वर भी इंसान को निरंतर प्राण वायु देता है, एनर्जी देता है। और इसीलिए शायद ऋषि मुनियों ने पीपल को पूजने के लिए, ताकि वो वृक्ष को लोग काटे नहीं, जो 24 घंटा ऑक्सीजन दे रहा हो वो वृक्ष को काटना नहीं चाहिए, इसलिए तुलसी की भी पूजा करना शुरू करवा दिया और पीपल की भी पूजा करना शुरू कर दिया, ताकि एक अंधश्रद्धा के माध्यम से भी लोग बंधे रहे और उसको काटे नहीं। इसलिए तो इसलिए भगवान कहते हैं कि समस्त वृक्षों में पीपल, निरंतर प्राण वायु भगवान देते हैं। सिद्ध पुरुषों में कपिल, परमात्मा सिद्ध है, सिद्ध स्वरूप है। गजराजों में ऐरावत, कहा ना, चाहे इस जगत की हो चाहे आध्यात्मिक जगत की हो, उसके साथ अपनी तुलना कर रहे हैं, विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। और मनुष्य में राजा, सर्वश्रेष्ठ हस्ती। हथियारों में व्रज, इतना शक्तिशाली भी है। गायों में सुरभि, सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। दैत्य राज, दैत्यों में भक्त राज प्रहलाद, इतना जिनका मन निर्मल हो। पशुओं में सिंह शक्तिशाली, और पक्षियों में गरुड़। शस्त्रधारियों में राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, ईश्वर भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। नदियों में गंगा परम पवित्र है। समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या सर्वोच्च, ज्ञान का सागर है परमात्मा। समस्त ऋतुओं में बसंत ऋतु निरंतर, ये गुण उनके जीवन से, उनके परमात्मा से निरंतर प्रवाहित होते हैं। समस्त मुनियों में व्यास, समस्त सृष्टि का बीज रूप हूं, मेरी दिव्य विभूति का अंत नहीं। भावार्थ भगवान का ये है कि ये दुनिया की चाहे 81 बातें भी ले ली, जिसके साथ अपने विशेषताओं की तुलना की, फिर भी उसका अंत नहीं। सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां वह सिर्फ मेरे स्वरूप का एक अंश समान है। परमात्मा के अंश नहीं है ये सभी, लेकिन ये विभूतियां जो है ये ईश्वर की महिमा को सिर्फ एक अंश मात्र स्पष्ट कर पाती है। इतना स्पष्ट करने के बाद भी वो परमात्मा के दिव्य स्वरूप का पूर्ण रीति से स्पष्टता नहीं कर पाती है। तब फिर 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन कराते हैं भगवान अर्जुन।